मेरी माँ बोली मेरे पिता से, किसी का जीवन चरित्र कहो जिससे मुझे नींद ना आए, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो, कोई ऐसी कथा विचित्र कहो। मेरी माँ सुभद्रा को नींद आ रही थी और वो चाहती थी जागना। मेरे पिता अर्जुन से कहा, कोई ऐसी कथा कहानी इतिहास सुनाओ जिससे मेरा ये वक्त कट जाए, मुझे नींद ना आए। तो मेरे पिता अर्जुन कहानी सुनाने लगे और वो कहानी क्या थी, बस चक्रव्यूह की सर्व कहानी पिता सुनाते जाते थे, मेरे पिता सुनाते जाते थे, पिता सुनाते जाते थे, और चक्रव्यूह की सर्व कहानी मेरे पिता सुनाते जाते थे, हम भी माता जी के पेट में सारी सुनते जाते थे। जब सातों डोडी टूट गई तो मेरी मात को निंद्रा आई है, पिता ने सुनाना बंद किया, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई है, मैंने इतनी सुन पाई है। हाँ मैं किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू, किला तोड़ ना जानू रे, किला तोड़ ना जानू, किला तोड़ ना जानता हूँ, पर जानता नहीं निकलना मैं, पृथ्वी सिंह बेधड़क चलूं, अब निश्चय कर लिया चलना मैं, निश्चय कर लिया चलना मैं, निश्चय कर लिया चलना मैं। ये है नौजवानी, यूं कह मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना, ये आज वाली माँ भी सिखा दे भाई, आज वाली माँ कहाँ सिखावे, बालक पेट में और इसका खान पान देख लो, मुल्तानी खा जा, खड़िया खा जा, चूल्हे की भराओ फोड़ फोड़ खागी, गाड़ के ठेकरे फोड़ फोड़ खागी, और जब इतना रंगा खागी फिर अभिमन्यु हो जाएगा इसके, फिर तो तुम जानो जैसा जग रहे, ऊपर तभी पतला तले तभी पतला, बिचारे था ढोलक सा पेट लेकर रास का, थोड़ी सी वार पहले तो हुआ ढोल बजरे के हुआ, बोले फुलाने का पोता हुआ, और थोड़ी सी वार पीछे एक लाल से लत्ते में जान लपेटू मुंडा सा मुँह बनाने में, कहा बात हुई, बोला जी फुलाने का पोता हुआ था वो उतर गया, मका उतर के नीम पे चढ़ रहा था वो उतर गया। अरे उतरा उतरा तो था और सोता ही कहता भाई है? बनाने वाली तो माँ होती है, ये जिस दिन से बच्चा गर्म में जाता उसी दिन से बच्चे का निर्माण करती है, तीन संस्कार तो माँ के पेट में ही हो लेते हैं बच्चे के है? अगर आप अपने बच्चे को, बहनों और माता सुनो, अगर आप अपने बच्चे को गोरा चिट्टा देखना चाहती हो ना, गोरा चिट्टा सुंदर तंदुरुस्त, तो उसको अच्छी अच्छी माँ को अच्छे अच्छे पदार्थ, केला सेब दूध लस्सी ये खाने पीने चाहिए। और जो भाई काला को लुटा ये भाई लक्ष्मण सिंह बेमोल जैसा करना चाहो तो भाई काली काली जम्मन खा करो और चाहे सिर का प्या करो नहीं ऐसा ही हो जाएगा। इसलिए बच्चों का निर्माण, आज बच्चे क्यों बिगड़ रहे, नहीं तो बिगड़ रहे, अब रोजाना टेलीविजन देखते हैं बच्चे और टेलीविजन पर जो गंदा प्रचार आ रहा है ना, सारा सारे बच्चे को वो याद है, छोटे छोटे बालक भी वही बात कहें, रोजाना टेलीविजन पर प्रचार होता है संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, ये बालकों ने सोच लिया अंडे तो बढ़िया चीज दुनिया में नहीं कोई, सब अंडे पे पिल गए, अब गरम अंडे खावे, गरम चाय पिए, गरम बीड़ी सिगरेट ठोका पीवे, तो भाई फिर बालक कम कैसे हो जाएंगे पैदा हुँ? अंडे तो तू दो भैंस को दे दे जी बिना रीखना शुरू कर दे बता, इसमें तो इतनी गर्मी हो, यूं मामला तो सारा नु बिगड़ गया, इस देश का खान पान बिगड़ गया, सारा रहन सहन बिगड़ गया, और बालक गंदे गंदे गाने। एक दिन एक छोरा अपनी दादी का कुर्ता पकड़ रहा और अपनी दादी का कुर्ता पकड़ कर गाना गा रहा, क्या कहे, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, अपनी दादी से कह रहा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इसकी दादी लाई चंडी ठाके नास गई, हमें मस्त चीज बतावे ला तुझे करूंगी ठीक, बाकी इसके पीछे ठोकर लग के बिचारी गिर पड़ी, चश्मा उतर गया, बुढ़िया ने फिर उठाया चश्मा लगाया और छोरे के पीछे भागी, और छोरे ने फिर गाना बदल दिया, क्या कहे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तो बा खुदा खैर करे कैसा है करी सना, कैसा है करी सना, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये हाल हो गया इस देश का। अरे भाई बालक को डरावे धमकावे, हमारे पास एक फुलम दे माई पूजे सरूर पर, ओ सारे गांव की बीज बांधी जाओ से पूछ, बाजी बाजी बुढ़िया पोते को भी ले जा, बहू को भी ले जा, और वहां एक चूड़ेगा रहे ठाडा सा, ओ कुमर मोटा ताजा, और एक रखे ठाडा मुर्गा, और जाती बहू को देखती और यू मारे रुक्का, और इसका रुक्का मारने का तरीका भी जा रहा ही है, बुढ़िया को बहू को देखती रुक्का दे, बोला ताई रे, अरे ताई रे, ए बहू का मुर्गा फिरवा ले। बताओ भाई इन बीमारियों को कौन बंद करेगा। एक हमारे गांव की बुढ़िया चली पूजन, सिर पे टोकरी धर दी, उसमें चिल्ले पूड़े गुलगुले बना के डाल रखे, रस्ते में नहर के पुड़ के धोरे लगी पिशाब करन, वे पांच चार गुलगुले पूड़े गिर गए इसमें। जब उठ के चली वे पूड़े गिर गए, पिशाब पे गिर गए, ठावगी चल चली गई। जितनी पीछे बहू बुहानी आवती, उन्होंने देखा बेबे बुढ़िया ताई बैठी थी यहाँ और पांच चार पूड़े गुलगुले पड़े, पानी सा भी खिंड रहा, यहाँ भी जरूर कोई सा देवता पूछता होगा। बस जितनी भी आवे वही पांच चार पूड़े गुलगुले गेर दे, एक गिलास पानी गेर दे, यानी तड़की तक सांझ लो बुढ़िया का मूत पूछता रहा, कोई नु पूछण वाला नहीं कौन सा देवता भाई। सांझ को बुढ़िया आई उल्टी, अपने वाले बुढ़िया के बात बताई, बोले तू जिक्र न करे, चल बांध के ले आऊंगे गठड़ी, लाए बांध के चार पांच और खूब डांगरू को खुआए। सांझ को आदमियों में जिक्र चला, होके पे बात चले करे। एक बोले अरे यहाँ नहर के पुड़ के धोरे इबलो तो कोई सा देवता पूजे नहीं था, और यू नवा पीर कौन सा तैयार हुआ भाई। उस बुढ़िया वाला बुढ़ा कहने लगा, भाई तो हमारे घर का ही पीर है। कौन सा पीर है भाई? बोले तो मुतंगन पीर नवा ही तैयार हुआ। तो इस देश में अंधविश्वास पाखंड इतना बढ़ गया भाई, कौन इलाज करे इस अंधविश्वास पाखंड का। अगर आप अभिमन्यु पैदा करना चाहते हो तो घर से अंधविश्वास पाखंड दूर करना होगा। अभिमन्यु कैसा था? नु कह मैं तो माँ के पेट में ही सीख लिया था चक्रव्यूह किला तोड़ना। धर्मदृष्टि कहने लगा, अच्छा ये बात है तो अभिमन्यु जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटे, चल। बस अस्त्र शस्त्र लेकर के जब रणभूमि को जाता है, लेकिन जोन से कैंप में वो उतरा रहती पहले, उसी कैंप में आता है, उसी कैंप में आता है, पहले उसी कैंप में आता है। उत्तरा के पास आया राजा कमल नयन की लड़की अभिमन्यु की धर्म पत्नी। उत्तरा ने पति के हाथ में तीर कमान अस्त्र शस्त्र देखे, और अस्त्र शस्त्र देखते ही कहने लगी, प्राणनाथ आज ये अस्त्र शस्त्र ये तीर कमान लेकर कहां जा रहे हो, या मुझे डराने के लिए आए? बोला उत्तरा तुझे नहीं पता ये कई दिन से लड़ाई चल रही है, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है, इस आपत्ति में मैं अगर परिवार के काम ना आया तो इस जिंदगी का जवानी का क्या बनेगा, और क्षत्रिय वीरों का काम क्या है, लड़ाई के अंदर मारना या मर जाना। हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, हो शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। श्री कृष्ण ने कर्ण अकेला समझाया कई रोज, और दुर्योधन को देना चाहा राज खजाना फौज, हो लिए मांग श्याम ने पांच गांव में फिर भी न वो सलाह करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। पृथ्वी सिंह बेधड़क धर्म के मैं कष्ट दूर कर दूं, जितने भी महारथी किले में चूर चूर कर दूं, मत डरो आप करो ओम जाप परमात्मा भला करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे, ओ शमशीर वीर ले कमा तीर युद्ध करने चला करे। लड़ाई के मैदान में जा रहा हूं, आज मेरे परिवार के ऊपर आपत्ति है, पति और पत्नी की बात हो ही रही थी। अरे भाई पति पत्नी में देखो जहां मेल होता है ना, जहां प्यार होता है वहां स्वर्ग बन जाता है, और जहां पति पत्नी में ही झगड़ा रहता है वहां नरक बन जाता है। एक चौधरी की एक चौधरी की होगी लड़ाई, और शरत लगी पक्की, शरत की लगी। चौधरी ने बोला जो मैं तेरी गैल बोलूं तो मैं भंगी का चूड़े का, या बोली जो मैं तेरी गैल बोलूं तो मैं भी भंगी की चूड़े की, कोई सा ना बोल ले, मिन्ना हो गया एक। चौधरी ने सोचा बहनु तो काम ना चले, तो खड़ा हो गया, एक मिन्ना हो लिया, घर में दो आदमी दोनों की बहुत चाल बंद, नू के काम चले, पर बोलू कैसे, जो पहले बोल जा तो चूड़ेगा हो जाएगा। चौधरी ने तरकीब काट दी, दोपहर को आया एक खोद का जेठ का मिन्ना, लू चले थी, नाया नाक है और धोती पाड़ ली, इसने धोती पाड़ी लंबे डबधुर तो धुर लो, उसका बनाया लंगोटा, लंगोटा बांध कर पीछे एडियो एक पुंछर लटका लिया, पीछे पीछे पुंछरा लटका वो एडियो का लगता जा। किसी पे तो दीवा सड़ाई, माचिस मांग ली, रसोई में गया और रसोई में जाके उस पूछड़े में पीछे जो लंगोटे में पूछ रहा छोड़ रखा उसमें आग लगा ली और आग लगा के चिल्ला। चौधरना ने देखा ना गएगा के ड्रामा सा करता फिरे, इसको तो पूछड़े में आग लग रही इसे पता नहीं, और यू इस दुकड़िया में लग रहा जान, इसमें तो कोई खतरा नहीं, पर जो बराबर वाले में बढ़ गया वहां रुई धरी वहां सन धरा वहां खाट पिड्डी है, घर में लगेगी आग, घर जलाकर घर का तो नाश हो जाएगा। पर तू बोल ले कैसे, बोल ले तो छूटेगी हो जाएगी। और चौधरी भी होशियार थी, इनने तरकीब काटी, थेली बजाई और थेली बजा कर बोली जी किसी का लंगोटा जड़ता जा, किसी का लंगोटा जड़ता जा। चौधरी पर थे मैंने गया बाज का नाड़ी की कोली भर कर बोलिया तेरी बल्ली पे कुर्बान लंगोटी और लंगोटी और बतरे में तो तुझे बुलवाना चाहूंगा किसी तरह से, तू बोल की बस यही चाहूंगा मैं तो ये है भाई। देखो घर में प्यार मोहब्बत, कई आदमी ऐसे हैं घर वाली को रोज छेते रोज पीटते बिचारी, ऐसे तो अच्छे खानदान की परिया बोल लेना मजबूत तकड़ी, पर बोल लेना और एक छोरा एक दिन देखा मरिया सा सड़िया सा, रोज पीटे रोज छेते रो, इनकी लड़ाई झगड़ा देख के ये बीरबानी रोज छुटाना में पड़ोसन। एक दिन इसे छो आ गया, इनने सोचा तो काम ना चले तो रोज हाड़ तोड़ जा, इसे छो आ गया भाई, लगाई हाथ में मरोड़ी ऊपर लेगी ठाकर ऊपर तन नाड़ के तान गाज जा गेर कर तरण छाती पे बैठ गई इसकी और फिर लग गया दांत ऋषि का डन। हनु बोला मेरे साथ क्यों मजाक कर रहे थे, मजाक लगा बता, ये पड़ोसन तो रोज आवती छुटान आज फिर आई, पर आज तो नक्शा बदले हुआ पाया, और दिन तो छोरा पीटता पाक रहता बहू ने, पर आज बहू छोरे की छाती में बैठी पाई। ये पड़ोसन सी आगे इसके मार के बोली ये नाश गई की ना छोड़ मरेगी से, ये तो वैसे ही कमजोर सा है छोड़ इसे। और जी भी छोरा तला पड़े पड़े नु बोलिया नहीं ताई तुम बगल ही रहो मैं अपने हांगे ते लिखड़ूंगा इसके चर्चा कर रहा था। माँ ने देखा कभी तेरा बेटा पत्नी के मोह में फंस जाए और सारा खेल बिगड़ जाए, तपस्या फेल हो जाए। आई और नु बोली बेटे अभिमन्यु मेरी बेटी उतरा, आज मेरे बेटे को रोकने का ये टाइम नहीं है। क्या बात, यूं कहने लगी जिस दिन के लिए मैंने बेटे को जन्म दिया था ना आज वो दिन आ गया, मैंने जिस दिन के लिए बेटे को गोद खिलाया था आज वो दिन आ गया। अपने बेटे को तैयार करने लगी माँ और क्या कहने लगी, हे सुभद्रा देवी बेटे को देने लगी थी उपदेश, सुभद्रा देवी बेटे को कर ले खून के रंग में जो वीरों का बेश लाडले, जो वीरों का बेश, और तेरे सामने किसी दुष्ट की नहीं चलेगी बेश, हे सुभद्रा देवी बेटे को जीतोगे तो राज करोगे करे बड़ाई देश तेरी करे बड़ाई देश, और मर जाओगे मुक्ति होगी रह तेरा नाम हमेश, सुभद्रा देवी बेटे को हो जानी
क्या कह रहे
हैं, और दो रोज महजी जिंदगानी, ये जिस्म जगत का फानी रे बोलो ओम, और पृथ्वी सिंह बेधड़क चला जर करता देश देश, हे सुभद्रा देवी बेटे को हर देर लगी उपदेश सुभद्रा देवी बेटे को तैयार कर रही है बेटे को। ये तैयार करने वाली ये माताएं होती हैं भाई, ये जैसा चाहे बच्चे का वैसा निर्माण कर सकती है, बच्चे का जैसा चाहे वैसा बना सकती है। माँ ही तो बनाती है, पर आज तो माँ बदल गई भाई, माँ बदल गई, माँ के गीत भी बदल गए। पुराने जमाने में गीत गा रही माताएं बहने, अब तो वो गीत ही नहीं रहे, नवे गीत आ गए, गीत गा रही नवे जमाने की छोरी। और क्या कह रही गीत में, जेठा जी लिया दे ऊंटनी, हो जेठा जी लिया दे ऊंटनी, हो मन धार काढ़नी आवे से लिया दे ऊंटनी, पितल का ये घड़वा इसमें दाल जमा जम बाजे से लिया दे ऊंटनी, जेठा जी लिया दे ऊंटनी, ऊंटनी मंगवा। मैं के करेगी बावली, बोली धार काढ़नी आवे, मगा धार काढ़नी आवे, भैंस मंगवा ले, गौ मंगवा ले, बकरी मंगवा ले, आराम से दूध निकल जाएगा। यू तो इतना बड़ा सामान, यू इतना बड़ा राज मंगवावे, इसकी धार कैसे काटेगी तू, इसकी धार अलबत्त तेरे हाथ नहीं जावा लो। और जो सीढ़ी साड़ी लगा के चढ़गी तू और इसने लात मार दी तो तेरी साइकिल सी टूटी पड़ी रहेगी, फिर डॉक्टर के ठाऊ फिरेंगे तुझे, तू यू बेकार का सामान क्यों मंगवाओ, कोई बढ़िया चीज मंगवाने। इसके गीत भाई ओहो और गाली गीत, हो सपेले बीन बजा दे मैं चलूंगी तेरे साथ रे, सपेले बीन बजा दे मैं चलूंगी तेरे साथ। मगा बावली जो सपेरे ने बीन बजा दी, तू तो सपेरे के साथ चली जाएगी और बाद में वो मेहमान बटे हुए तुझे लेना होगा उसके साथ, बस मैं इस ढोलक जगह बैठाऊंगे हम उसकी रोटी लगा के। आर्य लड़की ऐसे गीत नहीं गाती, जो आर्य परिवार की लड़की होती है बढ़िया खानदान की, उनके तो गीत भी बढ़िया ही होते हैं भाई। एक आर्य परिवार की लड़की ससुराल में गई, और जब ससुराल में गई तो इससे कहा गया, क्या कहा गया, इसकी ननद वगैरह पूछने लगी तुझे दुनिया में सबसे बढ़िया चीज कौन सी लगे, तो छोरी ने गीत गाया सबसे बढ़िया चीज, हाँ, हे मेरे मन भावे, हे मेरे मन भावे, यू तेरा भाई मेरी नणदी,
मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी नणदी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी नणदी, मेरे
मन भावे, क्यों भावे, सुबह उठता है टेम से संध्या करे नेम से,
उठता है टेम से
और संध्या करे नेम से, ब्रह्म मुहूर्त नावे हे चार बजे नित नावे, हे तेरा भाई मेरी नणंदी,
मेरे मन भावे हे तेरा भाई मेरी नणंदी, मेरे मन भावे तेरा भाई मेरी नणंदी, मेरे मन भावे।
चार बजे उठ जाता है, नहाकर धोकर रोजाना घर में हवन रचाता है, संध्या करता है संध्या,
वेद मंत्र बोले श्लोकों के अर्थ खोले हे यूं, वेद मंत्र बोले श्लोकों के अर्थ खोले, घर में रोजाना यज्ञ रचावे तेरा भाई मेरी नणंदी, मेरे मन भावे हे तेरा भाई मेरी नणंदी, मेरे मन भावे।
गीत भाई ओ, अरे पुराने जमाने में गीत गा रहे थे, सम्मण की मस्तानी तरज, फागण की मस्तानी तरज, और फागण में तो भाई बुढ़िया भी खड़ी हो जाग रहे थे, खात पते जिस पे चले नहीं जाता ले नहीं जाता, वह भी गलियारे में जा कोड़ी कोड़ी भागजन फूल थोड़े उलिख रह गया, और सब दिन साफ बनी फिरक रहे थी, और सम्मण में ओ इसके गीत सुन के ओ आदमी के लोर सी उठ रही थी, और भगवान भी खुश होकर बारिश कर दिया गया था, सम्मन की मस्तानी तरज, ओ छोरी बैठी जुड़ में और गीत गा रही झूलती हुई, क्या कहे गीत में, क्या कह रही छोरी, एक दुखिया छोरी थी, और छोरी क्या कह रही, सम्मन के गीत सुन सुन के इसके लोर सी उठने लगी, और गीत में क्या कहने लगी छोरी सुनो भाई, आर्य एक लड़की गीत गा रही और सम्मण की मस्तानी तर्ज में गीत है, क्या कहे भाई,
हे सम्मण आया बहना सारी झूल तीरी, सम्मण आया बहना सारी झूल तीरी, मेरा कहां हम्बे मेरा कहां, सुना पिया बिना रह गया री समणे आया बैना सारी झूलती काले काले बादल बहना मेरी इच्छा रहेरी काले काले बादल बहना मेरी इच्छा रहेरी हेरी कहीं बिजली हो मैं कहीं बिजली मचावे शोर समण सुना पिया बिना रह गया री
समण
नगर हिंडोले बेबे मेरी गड रहेरी
नगर हिंडोले बहना मेरी गड रहेरी
हेरी कहीं हो कहीं मोर मचावे शोर समण सुना पिया बिना रह गया री
ओ समण आया बहना सारी सामन सुना साजन बिना रह गया
हरी हरी खेती बेबे मेरी लहरा रही री हरी हरी खेती बहना लहरा रही री हेरी कहीं डूब हम बै कहीं डूब चुगे हैं डोर समण सुना सलन बिना रह गया है
सामण आया बहना सारी
पपैया बहना मेरी कर रहा री
हे पी पी पपैया बहना मेरी कर रहा री
हेरी कहीं मोर हम कहीं विधवा मचावे शोर समण सुना बलम बिना रह गया री
सामण आया बहना सारी
सिंह भाई बहना मेरी गा रहेरी
पृथ्वी सिंह भाई बहना मेरी गा गहेरी
हेरी गई बोले हम गई बोले कीटन कोरे सामण सुना पिया बिना रह गया री
सामण
इसलिए बहनों और माताओं तुम गीत भी बढ़िया गा करो तैयार करने वाली बनाने वाली तो तुम हो नौजवानों को तुम ही तो तैयार करती हो अभिमन्यु को माँ ने तैयार कर दिया और माँ की बात माँ याद दिला रही है आज क्या कह रही है बेटे आज लड़ाई के मैदान में जा मैंने जिस दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था आज वो दिन आ गया है मेरी छाती का दूध आज तू सफल कर दे बेटा आज लड़ाई के मैदान में तुझे वो दुशासन मिलेगा जो भरी सभा के बीच में तेरी माँ द्रौपदी को नंगी करना चाहता था आज तुझे उससे बदला लेना है बस इन शब्दों को सुनते ही अभिमन्यु के रोंगटे खड़े हो गए, आंख में खून उतर आ रहा, यूं कहने लगा, माँ बस अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्यों? अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा, आज दुनिया को दिखा दूंगा, हो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा दूंगा,
आज दुनिया को दिखा दूंगा,
हो कैसे बहादुर वीर,
आज दुनिया को दिखा दूंगा।
हथियार उठा के कर में अब कुदू जाए समर में, और शस्त्र को मार कमर में, जमीन पे घुटने टिका दूंगा,
घुटने टिका दूंगा, जमीन पे घुटने टिका दूंगा, वो कैसे बहादुर वीर, आज दुनिया को दिखा, आज दुनिया को दिखा दूंगा।
केरी का रूप बना के चलो तीक्ष्ण तेग उठा के, और उस लाल किले में और उस चक्रव्यूह में जाके खून की नदी बहा दूंगा,
खून की नदी बहा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, वो कैसे बहादुर वीर, वही दुनिया को दिखा दूंगा, अरे आज दुनिया को दिखा दूंगा।
अब आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं माँ, मैं लड़ाई के मैदान में जा रहा हूँ। बेटे की इस बात को सुनकर माँ को खुशी हुई, और माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और अपने बेटे के सिर के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। माँ माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। अरे भाई देखो, दुनिया में तीन किस्म की संतान होती है, एक को तो कहे पूत, दूसरे को कहे सपूत, और तीसरे को कहे कपूत। पूत तो वो जो माँ बाप की इज्जत जो कि तू मणि बनाए रख दे, लोग बाग नू कहे भाई बाप तो बढ़िया था पर लड़का भी बढ़िया है, और सपूत वो है जो चुगनी कर दे, लोग नू कहे बाप तो बढ़िया था पर लड़का उससे भी बढ़िया है भाई, और कपूत, कपूत अपनी खोवे गांव की खोवे, और रिश्तेदारों को नू कह लिया थारा भी जून गैली बांधता चलो भाई। और इस कपूत की पहचान बता दू, एक दिन इसकी माँ बीमार होगी, नू बोली बेटा मेरे पे उठ नहीं जाता, पेशाब करूंगी कोई बासण दे दे जाके। बेईमान के बच्चे ने चून छालने की छलनी दे दिया, बुढ़िया ने करा पेशाब, वो सारा तला लिकट गया, सारे कपड़े खराब हो गए, और फिर दूर खड़ा खड़ा दांत काट दे, नू कह मां बुढ़ापे में आंगाई लग रही, पेशाब भी छान के ही करने लगी। अच्छा ये कपूत है कि नहीं है भाई। एक दिन इसकी माँ बीमार है, अपनी माँ के साथ लड़े, और नू बोला इसकी माँ नू बोली नालाक तू मेरे साथ लड़े, मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, कम से कम उसका तो एहसान मान ले। नू बोला दुनिया में बतेरे मकान किराए पे मिले, तू अपना 9 महीने का किराया ले, यो अपनी माँ को भी 9 महीने का किराया दे, बताओ या बिना बनी संतान है कि नहीं भाई। ऐसी संतान से तो ना हो वो अच्छा है भाई। खैर इस गांव में तो कोई ऐसा है नहीं, यहाँ तो सब ठीक ठाक है, इस गांव की नहीं बात कहता मैं, यहाँ तो सब बढ़िया है भाई। के सामने बता रहा था माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। माँ ने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, फूलों की वर्षा सिर के ऊपर की, और क्या कहने लगी सुनो, अरे बेटे की वाणी सुन के माता जी हर्षाई, फूलों की एक डलिया भर के सिर ऊपर बरसाई, बेटे तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ,
बिना लड़ाई तेरे बचनों से दूध हमारा सफल हुआ,
समझ गई मैं दुर्योधन तो दुनिया से बेदखल हुआ, एक हफ्ते के अंदर अंदर,
एक हफ्ते के अंदर अंदर
हो जा खत्म लड़ाई,
बेटे की बात
आशीर वादे लेके हाय चल दिया अर्जुन का जाया
माँ का आशीर वादे लेके चल दिया अर्जुन का जाया
कुछ संरक्षक लिए साथ में दरवाजे ऊपर आया तरह तरह के शस्त्र लेके
तरह तरह के शस्त्र लेके आर्य वीर सिपाही
सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था
सबसे पहली डोडी ऊपर सिंध देश का राजा था
कई रोज पहले वहां पर वो जयधर तान विराजा था जिसके संग में दुर्योधन की
जिसके संग में दुर्योधन की
दुसला बहना रव्याही
बेटे की वाणी सुन के माता जी हर्षाई
उल्लो की
चलिया भर के सरयो पर बरसाई
सबसे पहली डोडी के ऊपर सिंध देश का राजा जयद्रथ मिला। वैसे जयद्रथ नाते में रिश्ते में अभिमन्यु का फूफा भी लगता था क्योंकि दुर्योधन की एक बहन थी जिसका नाम था दुसला वो ब्याही थी जयद्रथ के साथ। सबसे पहली डोडी के ऊपर अभिमन्यु को जयद्रथ ने ही रोकना चाहा।
सबसे पहली डोडी ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया
सबसे पहली ऊपर अभिमन्यु को रोक दिया
पृथ्वी सिंह बेधड़क वीर ने बुरी तरह से ठोक दिया अभिमन्यु ने फूफा जी की
अरे अभिमन्यु ने फूफा जी की बुरी दुर्दशा बनाई
इस कैसेट को जो भरवा रहे हैं भाई सुनील कुमार आर्य वो अपनी तरफ से हमारी भजन मंडली के लिए 501 रुपया इनाम के रूप में दे रहे हैं। भाई सुनील कुमार का हम हृदय से बार बार धन्यवाद करते हैं। तो बहनों और भाइयों मैं बता रहा था आपके सामने सबसे पहले दोड़ी के ऊपर जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को रोकना चाहा पर बहादुर अभिमन्यु क्या कहने लगा मुझे है कौन रोकने वाला
कोई नहीं
और जो कोई आवे मेरे सामने मर जागा अपडाला मुझको
कौन रोकने वाला
लड़ाई में होती थी गंभीर मार किसी को तलवार मार किसी को शमशीर मार अकेले उस मनु ने बहुत दिए वीर मार बुढ़े और जवान मार बहुत सही पीर मार बहादुर अभिमन्यु की जब होती थी आखिर मार सब की रेत खाई तिवाड़ा मुझको
कौन रोकने वाला जो कोई आवे मेरे सामने
अर्जुन का का लाल चला, तीरों को चलाता हुआ सामने से दिख गए, लड़ाई में आता हुआ नजरों में आन पड़ा, आता हुआ जाता हुआ जयद्रथ को बेहोशी में जमी पे गिराता हुआ, इतना देख उसको वहाँ चक्कर सा खाता हुआ, किसी ने नहीं संभाला मुझको, कौन रोकने वाला, जो कोई आवे काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा, पहली दौड़ी के ऊपर जयद्रथ को बेहोश बनाकर बहादुर अभिमन्यु आगे निकला, पर अभिमन्यु के आगे निकलते ही जयद्रथ की मूर्छा समाप्त हुई, होश में आया और अपने दरवाजे को दौड़ी को फिर रोककर खड़ा हो गया। भीम ने लाख कोशिश अंदर जाने की, पर जयद्रथ के सामने आज भीम की कोई पेश नहीं चल रही। अकेला अभिमन्यु मारता काटता बढ़ता जा रहा है। क्या देखा सामने, एक दौड़ी ऊपर देखा गुरु द्रोण खड़े हुए, गुरुजी ने देखा ढेर लाशों के हैं पड़े हुए, जख्मी और बेदाद पड़े एक दूजे पे चढ़े हुए, छिड़का जंग कुठाड़ा मुझको, कौन रोकने वाला, की बहन बेटी सुनकर हाल रोने लगी, 20-25 साल तक की बहन विधवा होने लगी, जख्मों का बहाना लेके बहुत सेना सोने लगी और बहुत सी सेना रास्ता बचने का भी टोने लगी, कहे पृथ्वी सिंह ऐसी धड़ाधड़ होने लगी, हो गया बंद उजाड़ा मुझको, कौन रोकने वाला, जो कोई आवे सामने देखा, दोड़ी के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। गुरु जो दीगो देखते ही अभिमन्यु ने तरकस से तीर निकाला, कमान पर तीर को रखा और कमान को कान तक खींच कर तीर को छोड़ दिया, द्रोणाचार्य के दोनों को पैरों के बीच में जमीन में जाकर यह तीर धस गया। नमस्ते की गुरु को, लड़ाई के मैदान में भी गुरु का सम्मान किया जा रहा, नमस्ते कर रहा है। गुरु जी ने देखा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु है, अभिमन्यु को देखते ही गुरु द्रोणाचार्य यूं कहने लगे, बेटे अभिमन्यु यहाँ तो तेरे बाप अर्जुन की भी पार नहीं बसाती, तू यहाँ मरने के लिए क्यों चिल्लाया, इसलिए बेटे मेरी बात मान, जा भाग जा हट जा, ओ बच्चे नादान अपनी जान गंवाता क्यों है रे बच्चे,
हट जा ओ नादान अपनी जान गंवाता क्यों,
मेरे सन्मुख तेरा बाप भग जावेगा वो चुपचाप, लेकिन तू अपने ही आप मौत के मुंह में आता क्यों है रे बच्चे,
हट जाओ अपनी जान
के। गुरु द्रोण के बहन वीर के हुए गुलाबी नैन, और दिन की करूं किले में रैन, पृथ्वी सिंह घबराता क्यों है बच्चे,
हट जाओ अपनी जान गवाता क्यों है, हट जाओ बच्चे नादान अपनी जान गवाता क्यों है,
भाग जा बेटे चला जा वापस, यहां मरने के लिए क्यों चलाया। अभिमन्यु हंसकर यूं कहने लगा, गुरुजी अक्षत्रिय वीर लड़ाई से भागने के लिए नहीं आते, लड़ाई में तो मारना और मरना है, पर मेरी लड़ाई आपसे नहीं, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं, मुझे तो आज वो नालायक दुशासन चाहिए जो मेरी माँ द्रौपदी को भरी सभा में नंगी करना चाहता था, मुझे आज उससे बदला लेना है। द्रोणाचार्य ने भी सोच लिया, नाश हो जीविन का, मरे जीविए उजड़े जबिए, तू क्यों लाना ले भाई। बस गुरु द्रोण कहने लगे, मैं करूं नहीं अनुरीत, जा अभिमन्यु युद्ध में बेटा होगी तेरी जीत, इतना कहकर चला गया, पीछे को फिर न लखाया है दुर्योधन का छोटा भाई, फिर दुशासन आया है,
फिर दुशासन आया है, दुशासन आया है,
सामने दुशासन खड़ा दिखाई दिया, और दुशासन को देखते ही अभिमन्यु को क्रोध आ गया, रथ से नीचे कूद गया, दौड़कर दुशासन के रथ पर चढ़ गया, दुशासन को पकड़ा नीचे डाल लिया, छाती पर बैठ गया और क्या कहने लगा, हे वीर अभिमन्यु ने, हे रे पापी लिया ता
धरण पेटारे
छाती ऊपर गुजलेट के पेट पधरी कटार दुष्ट के पेट पधरी कटार
और थोड़ी देर में दुष्ट करूं तेरे पेट के परली पार
अभी मन्यू
खता मेरी माँ पिटी चोटी पकड़ जमी पे घसीटी नालायक पकड़ पकड़ के घिटी है भगवान लेकिन आज बाल का उबाल बाल कर बदला लेगा तारे
अभी मन्यो ने
तुझे ना मारूं ओ नालायक शार आई याद तुझे ना मारूं ओ नालायक शार भरी सभा में प्रण किया था भीम का बनेगा शिकार इतनी कह के छोड़ दिया था वो पापी बदकार और दुर्योधन का लक्ष्मण लड़का आया ले तलवार
शासन को छोड़ दिया जा चचा भीम की प्रतिज्ञा मुझे याद आ रही है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं दुशासन के छोड़ते ही दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण सामने आकर डट गया और यह चक्रव्यूह किले की कमान की लड़ाई थी इधर से दुर्योधन का लड़का लक्ष्मण है उधर से अर्जुन का बेटा अभिमन्यु दोनों राज के अधिकारी थे इनमें से एक मरा तो लड़ाई खत्म आमने सामने आ गए बस दोनों तरफ की सेना शांत खड़ी होकर तमाशा देखने लगी कि लड़ाई का फैसला तो चंद मिनटों में हो जाएगा अरे इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई रे इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई रे इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई चाचा ताऊ सगे फुप्पा भाई भाई लड़ने लगे लड़ाई से पहले बातों में झगड़ने लगे तरकसों से तीर बड़े जहरीले लिकड़ने लगे लिकड़ते ही तीर जाके छाती अंदर पड़ने लगे रकट कट शीश उनके धरती ऊपर पड़ने लगे अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे अपनी वीरता के ऊपर दोनों ही अकड़ने लगे उनके रवारे बहुत बिचारे मर गए उठ उठ मिर्गी रे इस वक्त किले में जंग उड़ाली छिड़गी आई हुई अपने आप नहीं आई सुकनी की बुलाई हुई सुकनी को ये सारी बात सबल की बताई हुई सुकनी के ही कारण सारे देश में डराई हुई नालियों में खून बहा और लाशों की खाई हुई एक चीज ऐसी थी जो जहर में बुझाई हुई लक्ष्मण ऊपर छोड़ दई जहरीली दवाई हुई सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई हुई सेना सहित दुर्योधन के लड़के की सफाई अरे लक्ष्मण जी कर रे 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 लक्ष्मण जी का मरना सुन कर फौज में भगे दड़ पड़ गई रे इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई रे इस वक्त किले अभिमन्यु ने तरकस से जहर में बुझा हुआ तीर निकाला और तीर को छोड़ दिया, जाकर तीर लक्ष्मण की छाती में धस गया। तीर के लगते ही लक्ष्मण तो धरती पर चक्कर खाकर गिर पड़ा। लक्ष्मण के गिरते ही कौरव दल में खलबली मच गई, हाहाकार की आवाज आने लगी। जब इस बात का पता लक्ष्मण की मां को चला तो धरती में सर मार मार कर ये रोने लगी और अपने पति दुर्योधन को कोसने लगी। ठाके, अरे लक्ष्मण जी की माता जी को जब ऐसा मालूम हुआ, तेरा बेटा सदा सदा भूमंडल से घूम हुआ, टक्कर मारी दीवारों में और माथे में घूम हुआ, संध्या नहीं हुई कहीं कहीं नहीं हूं मैं हुआ, कृष्ण की ना मानी बात मेरा पति भूम हुआ, द्रौपदी के चीर तारे और गधे की धूम हुआ,
रे द्रौपदी के चीर तारे और गधे की धूम हुआ।
इतना कह कह इंदुमती धरती पे पड़ी रे गिरड़गी,
इस वक्त किले में जंग उड़ाली छिड़की, इस वक्त किले में जंग उड़ाली, ओ इस वक्त किले में जंग उड़ाली छिड़की।
बहनों और भाइयों, लक्ष्मण के मरते ही दुर्योधन के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा, सातों मारतियों से कहने लगा, मैं लड़ाई जीतूं या हारूं, राज मिले या ना मिले, इसकी कोई परवाह नहीं, पर जिसने मेरे बेटे लक्ष्मण को मौत के घाट उतार दिया, ये अभिमन्यु बचकर निकलना नहीं चाहिए। लड़ाई के नियम को तोड़ दिया गया, अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया गया, इधर एक अकेला अभिमन्यु, उधर सात मारथी, पर सातों का जवाब अकेला ही दे रहा है। बहनों और भाइयों, ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चला। कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष की डोरी को काट दिया तो निहत्ता हो गया, रथ का पहिया निकालकर जिधर निकलता है उधर ही मैदान साफ कर देता है। अरे माता जी के गर्भ अंदर युद्ध तो बताया गया, यानी चक्रव्यूह किला तोड़ना सिखाया गया, नहीं बाहर निकलने का रास्ता बताया गया, बहुत से वीरों के द्वारा उस पर जुल्म ढाया गया, अकेले उस अभिमन्यु को ऐसी जगह लाया गया, खाना तोड़ा दूर भाई पानी ना पिलाया गया, गर्दन पर तलवार मारे जमीन पे गिराया गया,
अरे गर्दन पे तलवार मारे जमीन पे गिराया गया,
अरे बनी रे बनाई पृथ्वी सिंह आखिर में बात बिगड़ गई, रे
इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई, रे इस वक्त किले में जंग कुड़ाली छिड़ गई।
बहनों और भाइयों, चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया गया, जयद्रथ का दांव बैठ गया, पीछे से जाकर जयद्रथ ने अभिमन्यु के सिर पर वार कर दिया। सिर पर वार होते ही अभिमन्यु धड़ाम से धरती के ऊपर गिर पड़ा। गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर जयद्रथ ने लात ठोकर मारी, और जब ठोकर मारी तो कर्ण इस तमाशे को देख रहा था, कर्ण जानता तो सब कुछ था। कर्ण ने दौड़कर जयद्रथ के हाथ को पकड़कर कहा, जयद्रथ ये वही अभिमन्यु है जो पहले दरवाजे पर तुझे बेहोश बनाकर आया था, इसने नियम को नहीं तोड़ा और तू गिरे हुए अभिमन्यु के सिर के ऊपर लात ठोकर मारता है, अगर अब की बार तेरे अभिमन्यु को हाथ भी लगा दिया ना तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभिमन्यु को थोड़ा होश आ गया, होश आया और कर्ण की तरफ को देख के बोला, ताऊ थोड़ा सा पानी पिला दे। इस शब्द को सुनते ही कर्ण तो दहाड़ देकर रो पड़ा, अर्ण बोला, रे अभिमन्यु इसी शब्द को सुनने के लिए तो तरस रहा था, तू पहले से एक बार भी ताऊ कह देता, इनमें से तो किसी की हिम्मत भी नहीं थी जो तेरी तरफ उंगली भी कर देता, पर बेटे अब बात हाथ से निकल गई। अभिमन्यु के सिर को गोद में रख के रोने लगा कर्ण। दूसरी तरफ धर्म युधिष्ठिर को पता चला, भगा हुआ आया, पर अब तो लाश पड़ी थी, हाहाकार मचाने लगा और यूं कहने लगा, अभिमन्यु अर्जुन आएगा, भाई आएगा और पूछेगा अभिमन्यु कहां है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बस रोया देख कर रोया, राजा धर्म देख कर रोया, आए राजा धर्म देख कर रोया,
अरे रोया।
ने देखा वहां कहीं धड़ पड़ा रे कहीं सिर पड़ा लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा हाय लाश पे उस वीर की बेहोश होकर गिर पड़ा
हो रे किसी समय वीर नहीं उठने का
बिचारी बिन पति घर की रही ना घाट की रे दुखिया बिचारी बिन पति घर की रही ना घाट
पिता मह मर गए चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए हाय चाचा ताऊ और बहनोई सब किनारा कर गए
हे रे किसका दोष बताऊं रे भाई फल लगा रे बीज जैसा बोया हाय राजा
धर्म देख के रे रोया
रोया देख के रोया राजा धर्म देख के रे रोया रे राजा धर्म देख के रोया
चारों तरफ रोआ राठ हाहाकार की आवाज आ रही है बहनों और भाइयों यह है आपस की लड़ाई फूट बीमारी इसी ने इस देश का सत्यानाश किया दो लड़के थे दोनों समाप्त हो गए देश का भविष्य अंधकार में हो गया अगर ये लड़ाई न होती तो इस देश का हाल ऐसा न होता देश गुलाम न होता इसलिए तो बता रहा था आपके सामने आओ हम मिलकर के रहें भाई आपस का बैर
हो बुरा रे जहर ना रे खैर जहां उठे बीमारी
सभी नस नस का देश में रखिया गैर के बस का
देश में रखिया गैर के बस का
आपस का कटिंग मिटे पृथ्वी सिंह फिर बनेंगे किंग यहाँ कसण मुरारी रे
रे रे रे रे रे रे रे आपस का पैर
इसलिए बहनों और भाइयों आओ हम घर में परिवार में मोहल्ले में अपने गांव में और अपने देश में मिलजुल करके रहें जहां लोग मिलजुल करके रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है हम मिलकर के रहेंगे तो देश आगे बढ़ेगा देश उन्नति और तरक्की करेगा मैंने जैसे पहले भी बताया था हमारी असली कैसेट मिलने का स्थान अब विशाल सिनेमा बड़ोत में, सुभाष बाजार में, जो सुभाष बाजार एक नया बाजार बना है, गली में अंदर घुस के आर्य इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, भाई सुनील कुमार वहां आपको मिलेंगे आर्य जी, और उनके पास हमारी असली कैसेट मिल सकती है। इसलिए सभी से मेरी तो एक ही प्रार्थना है, आप हमारी असली कैसेट यहीं से खरीदें, किसी और दुकान से ना खरीदें, क्योंकि बाकी सब नकली कैसेट बनाते हैं और फीता बहुत कमजोर, वो एक दो बार बज के समाप्त हो जाती है, टूट जाती है। इसलिए बहनों और भाइयों, आप सुभाष बाजार में सिनेमा विशाल सिनेमा के पास जाएं बड़ोत में, और वहीं आपको ये आर्य इलेक्ट्रॉनिक से हमारी असली कैसेट मिल सकती है। इसलिए आपके सामने चर्चा कर रहा था, आओ हम सब मिल करके रहेंगे तो देश उन्नति तरक्की प्रगति करेगा। और कह रहा था क्या, फूट बीज जय चंद ने बोया, तभी से भारत गफलत में सोया, खोया धर्म राज आगे धोके बाज, भारत की लाज हर तरह से उतारी रे, रे 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 रे